एकत्रा ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्ते और ज्ञान गोष्ठी में एक बार फिर से स्वागत। मैं हूं आपका पहला होस्ट
और मैं हूं आपकी दूसरी होस्ट। आज हम एक ऐसे कमाल के आइडिया पर बात करने वाले हैं जिसने सचमुच हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी।
साइंटिफिकली है ना?
हाँ बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत की।
और इस सफर में हमारे गाइड होंगे भूभौतिक विज्ञानी पीटर मोलनार। हम उनकी किताब प्लेट टेक्टोनिक्स के सारांश को आज खंगालेंगे।
और ये टॉपिक इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि हम जिस जमीन पर चलते हैं, घर बनाते हैं,
उसे हम स्थिर मानते हैं।
बिल्कुल। पर सच तो ये है कि ये जमीन एक विशाल धीमी गति वाले महासागर पर तैर रही है। हिमालय का बनना, भूकंप का आना, ये सब उसी हलचल का नतीजा है।
सही कहा, ये सिर्फ साइंटिस्ट के लिए नहीं है, ये एक तरह से पृथ्वी का ऑपरेटिंग मैनुअल है।
जो हमें समझाता है कि हमारी दुनिया की सतह पर जो कुछ भी होता है वो क्यों होता है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं।
इस थ्योरी को समझने से पहले मुझे लगता है इसके एक बड़े महारथी पीटर मोलनार को जानना जरूरी है।
हाँ बिल्कुल, वो सिर्फ एक किताबी जियोफिजिस्ट नहीं थे, वो एक असली खोजकर्ता थे।
उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने अपना ज्यादातर काम जमीन पर किया, मतलब फील्ड में, खासकर एशिया में।
वो इस बात से बहुत फैसिनेट थी कि हिमालय और तिब्बत का पठार, जिसे हम दुनिया की छत कहते हैं, आखिर बना कैसे।
सही, उन्होंने दशकों लगा दिए इस पहेली को सुलझाने में कि जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो ऐसा क्या हुआ कि इतने ऊंचे पहाड़ बन गए।
और उनका अंदाज अनोखा था। वो सिर्फ ऑफिस में बैठकर मैप नहीं देखती थी, वो फील्ड पर जाती थीं, भूकंप के डेटा का विश्लेषण करती थीं
और जीपीएस जैसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये नापती थीं कि जमीन असल में कितनी रफ्तार से और किस दिशा में खिसक रही है।
थ्योरी को जमीनी हकीकत से जोड़ा। वो उन लोगों में से थीं जो पूछती थीं, ठीक है सिद्धांत तो बहुत सुंदर है, पर क्या असल दुनिया में भी ऐसे ही काम करता है?
तो ये किताब किस बारे में है? अगर एक लाइन में कहूँ तो ये उस मास्टर की के बारे में है जिसने भूविज्ञान के लगभग सारे ताले खोल दिए।
ये बताते कि पृथ्वी की ऊपरी परत कोई एक ठोस खोल नहीं है।
हाँ, बल्कि पहेली के टुकड़ों की तरह है, मतलब प्लेट्स जो लगातार धीरे धीरे खिसक रही हैं।
और किताब का मेन आइडिया ये है कि सारा एक्शन इन्हीं प्लेट्स के किनारों पर होता है।
एग्जैक्टली।
जब ये प्लेट्स टकराती हैं तो पहाड़ बनते हैं, जब ये एक दूसरे से दूर जाती हैं तो नए महासागर बनते हैं,
और जब अगल बगल से रगड़ खाती हैं तो भूकंप आते हैं।
मतलब पृथ्वी की सतह पर होने वाली हर बड़ी घटना का कनेक्शन इन्हीं प्लेट्स की हरकतों से है।
और इस किताब सिर्फ फैक्ट्स की लिस्ट नहीं है, जो मुझे सबसे अच्छा लगा, ये एक जासूसी कहानी की तरह।
हाँ, ये हमें उस दौर में ले जाती है जब सब मानते थे कि धरती स्थिर है। फिर एक आदमी एक अजीब सा आइडिया लेकर आता है
जिसका सब मजाक उड़ाते हैं,
और फिर दशकों बाद नई टेक्नोलॉजी की मदद से मिले सबूत उस आइडिया को विज्ञान की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक बना देते हैं।
तो कहानी शुरू होती है 20वीं सदी की शुरुआत में। एक जर्मन वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड वेगेनर।
हाँ,
उन्होंने एक बहुत ही कह सकते हैं धाड़स आइडिया पेश किया। उन्होंने कहा कि आज जो अलग अलग महाद्वीप देखते हैं, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, भारत,
ये सब कभी एक साथ जुड़े हुए थे।
बिल्कुल, एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में, जिसका नाम उन्होंने पैंजिया रखा।
सोचिए उस समय के लिए ये कितनी बड़ी बात होगी। सब मानते थे कि महाद्वीप जहाँ है हमेशा से वहीं थे,
और विगिना कह रहे थे कि नहीं, ये तो नाव की तरह तैर रहे हैं। जाहिर है लोगों ने पूछा होगा आपके पास सबूत क्या है,
और उनके पास सबूत थे
एक नहीं, चार चार। पहला और सबसे मजेदार था जिग्सॉ फिट। अगर आप दुनिया का नक्शा देखें तो दक्षिण अमेरिका का पूर्वी किनारा
अफ्रीका के पश्चिमी किनारे में ऐसा फिट होता है जैसे किसी पहेली के दो टुकड़े हो।
बिल्कुल, ये तो कमाल का सबूत है।
और दूसरा सबूत भी कुछ ऐसा ही था ना, जीवाश्म वाला।
हाँ, उन्हें भारत, अफ्रीका, अंटार्कटिका जैसे अलग अलग महाद्वीपों पर एक ही तरह के पौधों और जानवरों के जीवाश्म मिले।
ये ऐसे जीव थे जो हजारों किलोमीटर का समंदर तैरकर पार कर ही नहीं सकते थे।
तो इसका एक ही मतलब हो सकता था कि ये जमीनें कभी जुड़ी भी थीं।
अच्छा, और भी कुछ था?
हाँ, तीसरा सबूत था चट्टानों का मेल। उत्तरी अमेरिका के एप्लाचियन पहाड़ और स्कॉटलैंड के पहाड़ों की चट्टानें
उम्र और बनावट में एक जैसी थीं, जैसे किसी ने एक ही केक को काटकर दो अलग अलग प्लेटों में रख दिया हो।
क्या बढ़िया एनालॉजी है। और चौथा सबूत था प्राचीन जलवायु। भारत जैसे गर्म देश में उन्हें ग्लेशियर के निशान मिले।
अच्छा, ये कैसे हो सकता है?
ये तभी हो सकता था जब भारत कभी ठंडे दक्षिणी ध्रुव के पास रहा हो।
इतने सारे सबूत, इसके बाद तो सबने उनकी बात मान ली होगी।
यही तो कहानी में ट्विस्ट है, किसी ने नहीं मानी।
क्या बात कर रहे?
पूरी वैज्ञानिक बिरादरी ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया, उनका मजाक उड़ाया गया, क्योंकि उन सबके पास विग्नर के लिए एक ही सवाल था।
एक ऐसा सवाल जिसका जवाब विग्नर के पास नहीं था।
हाँ, कैसे इतनी बड़ी जमीन को, पूरे के पूरे महाद्वीप को हिलाने की ताकत आएगी कहाँ से?
और इस एक सवाल ने उनकी पूरी थ्योरी पर दशकों तक ग्रहण लगा दिया। और फिर जवाब आया एक ऐसी जगह से जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, समुद्र की गहराइयों से।
सही कहा, दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोनार टेक्नोलॉजी बनी थी। जब वैज्ञानिकों ने उसी टेक्नोलॉजी से समुद्र के तल का नक्शा बनाना शुरू किया तो वो हैरान रह गए।
उन्होंने क्या देखा?
समुद्र का तल सपाट नहीं था, बल्कि उसके बीचों बीच पूरी दुनिया में फैली एक विशाल पर्वत श्रृंखला थी,
जिसे मिड ओशन रिज कहा गया।
हाँ, और हैरी हेज जैसे वैज्ञानिकों ने एक आइडिया दिया जिसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग यानी समुद्र तल का फैलाव कहा गया।
उन्होंने कहा कि इस रिज पर धरती के अंदर से गर्म मैग्मा ऊपर आता है और एक ज्वालामुखी की तरह फटता है,
और ये मैग्मा ठंडा होकर नई समुद्री जमीन बनाता है और पुरानी जमीन को दोनों तरफ धक्का देता है,
एक कन्वेयर बेल्ट की तरह।
एग्जैक्टली, एक कन्वेयर बेल्ट की तरह। इसने वैगनर के सवाल का जवाब दे दिया कि महाद्वीप क्यों खिसक रहे हैं।
क्योंकि उनके नीचे की समुद्री जमीन ही खिसक रही है।
पर अब भी एक पक्का सबूत चाहिए था, और वो सबूत था चुंबकीय पट्टियाँ।
हाँ, ये वाला हिस्सा तो दिमाग घुमा देने वाला है।
बताइए इसके बारे में।
देखिए, जब ज्वालामुखी से लावा निकलता है और ठंडा होकर चट्टान बनता है, तो उसमें मौजूद छोटे छोटे चुंबकीय कण
उस समय पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में खुद को लॉक कर लेते हैं।
हाँ, एक छोटे कंपस की तरह। और हमें ये भी पता है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ लाख साल में पलट जाता है।
नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाता है और साउथ वाला नॉर्थ।
तो जब वैज्ञानिकों ने एक मैग्नेटोमीटर को जहाज के पीछे बांधकर समुद्र के ऊपर से गुजारा, तो उन्हें मिड ओशन रिज के दोनों तरफ चुंबकीय पट्टियों का एक परफेक्ट शीशे जैसा पैटर्न मिला।
नॉर्मल रिवर्स, नॉर्मल रिवर्स।
बिल्कुल, ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। समुद्र का तल एक विशाल टेप रिकॉर्डर की तरह काम कर रहा था,
जो करोड़ों सालों से पृथ्वी के बदलते चुंबकीय क्षेत्र को रिकॉर्ड कर रहा था।
और यही वो सबूत था जिसने प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी पर मुहर लगा दी।
वेगनर का कैसे का जवाब मिल चुका था।
इसके बाद ही प्लेट टेक्टोनिक्स का औपचारिक सिद्धांत बना कि पृथ्वी की बाहरी परत, जिसे लिथोस्फेयर कहते हैं, करीब एक दर्जन बड़ी प्लेटों में टूटी हुई है,
और ये प्लेटें नीचे की गर्म प्लास्टिक जैसी परत यानी एस्थेनोस्फेयर पर तैर रही हैं। और जैसा हमने पहले कहा, सारा एक्शन इन्हीं प्लेट्स की बाउंड्री पर होता है।
हाँ, तीन तरह की बाउंड्री होती हैं। पहली डाइवर्जेंट, जहां प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। मिड अटलांटिक रिज इसका सबसे अच्छा उदाहरण है,
यहां नई जमीन बनती है।
और दूसरी है कन्वर्जेंट, जहां प्लेटें टकराती हैं। ये एक स्लो मोशन कार क्रैश जैसा है।
जब एक भारी समुद्री प्लेट हल्की महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है, तो समुद्री प्लेट नीचे धस जाती है। इससे एंडीज जैसे ज्वालामुखी पहाड़ बनते हैं।
लेकिन जब दो महाद्वीपीय प्लेटें टकराती हैं, जैसे भारत और एशिया, तो कोई भी नीचे नहीं जाना चाहती।
नतीजा, जमीन ऊपर उठती है और हिमालय जैसे विशाल पहाड़ बन जाते हैं।
और तीसरी?
तीसरी है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। यहाँ प्लेटें अगल बगल से खिसकती हैं, जैसे दो गाड़ियां एक दूसरे को रगड़ती हुई निकले।
यहाँ न कुछ बनता है न नष्ट होता है, बस जबरदस्त तनाव पैदा होता है जो भूकंप के रूप में बाहर निकलता है। कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियास फॉल्ट इसका सबसे खतरनाक उदाहरण है।
अच्छा, एक आखिरी सवाल।
यस।
इन सब का इंजन क्या है? ये सब चल कैसे रहा है?
इसका इंजन पृथ्वी के अंदर की गर्मी है। पृथ्वी का कोर बहुत गर्म है, और ये गर्मी मैंटल को गर्म करती है,
जैसे पतीले में पानी उबालने पर होता है।
बिल्कुल, गर्म पानी ऊपर आता है और ठंडा पानी नीचे जाता है। वही प्रक्रिया मैंटल में अरबों सालों से चल रही है, जिसे संवहन कहते हैं।
और आज वैज्ञानिक स्लैब पुल और रिज पुश को सबसे बड़ा बल मानते हैं।
हाँ, स्लैब पुल का आइडिया मुझे बहुत मजेदार लगता है। ये ऐसा है जैसे आप टेबल से टेबल क्लॉथ खींच रहे हों, और किनारे पर लटकता हुआ भारी हिस्सा ही पूरे कपड़े को नीचे खींच लाता है।
तो इस सबका निचोड़ क्या है? मेरे लिए जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं वो जिंदा है।
वो सांस ले रही है, हिल रही है, बदल रही है।
हाँ, ये कोई मरा हुआ पत्थर नहीं है, बल्कि एक लिविंग ब्रीदिंग सिस्टम है। हिमालय का हर साल थोड़ा सा ऊंचा होना इसी का सबूत है।
हाँ,
और मेरे लिए दूसरा बड़ा सबक है एक अकेले सिद्धांत की ताकत। प्लेट टेक्टोनिक्स से पहले भूविज्ञान में हर चीज अलग अलग थी।
सही कहा, भूकंप एक अलग विषय था, ज्वालामुखी अलग।
इस एक थ्योरी ने सबको एक ही धागे में पिरो दिया। अब हमें पता है कि दिल्ली के पास भूकंप का खतरा क्यों है और दक्कन का पठार ज्वालामुखी चट्टानों से क्यों बना है।
ये सब एक ही बड़ी कहानी का हिस्सा है।
और तीसरा सबक जिसके बिना ये कहानी अधूरी है वो है टेक्नोलॉजी का महत्व।
बिल्कुल, अगर दूसरे विश्व युद्ध में सुनार नहीं बना होता तो हम आज भी शायद समुद्र के तल के बारे में कुछ नहीं जानते
और वैगनर के आइडिया पर बहस ही कर रहे होते। ये दिखाता है कि विज्ञान और तकनीक साथ साथ चलते हैं।
किताब में कुछ विचार ऐसे हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। एक जगह कहा गया है कि
प्लेट टेक्टोनिक सिर्फ यह नहीं बताता कि महाद्वीप कैसे चलते हैं, ये एक व्यापक ढांचा है जो समझाता है कि पृथ्वी एक गतिशील प्रणाली के रूप में कैसे काम करती है।
इसका मतलब ये सिर्फ एक पहेली का हल नहीं बल्कि पूरी पहेली को समझने का नजरिया है।
हाँ, ये पृथ्वी का DNA समझने जैसा है।
एक और बात जो दिमाग में रह जाती है, हर भूकंप, हर ज्वालामुखी और हर पर्वत श्रृंखला हमें हमारे ग्रह के भीतर काम कर रही ताकतों के बारे में कुछ बताती है।
ये नजरिया ही बदल देता है।
हाँ, अब कोई भूकंप या ज्वालामुखी एक रैंडम घटना नहीं लगते,
बल्कि ऐसा लगता है जैसे धरती हमें कोई संदेश दे रही है कि देखो सतह के नीचे बहुत कुछ चल रहा है।
और शायद सबसे गहरा विचार, प्लेट टेक्टोनिक्स को समझने के लिए हमें गहरे समय यानी डीप टाइम के पैमाने पर सोचना होगा।
हमारी जिंदगी 70-80 साल की होती है लेकिन ये प्रक्रियाएं करोड़ों सालों से चल रही हैं।
हिमालय हमारे नाखून बढ़ने की रफ्तार से ऊंचा हो रहा है। ये हमें एक विशाल दृष्टिकोण देता है कि हम एक बहुत बड़ी और लंबी कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है।
अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत दिलचस्प है, पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या काम है?
बहुत काम है। सबसे सीधा उपयोग है भूकंप के खतरों का आकलन करने में।
ये सिद्धांत हमें बताता है कि भारत का उत्तरी हिस्सा जैसे उत्तराखंड, हिमाचल और दिल्ली NCR भूकंप के लिहाज से इतना संवेदनशील क्यों है।
क्योंकि भारतीय प्लेट आज भी यूरेशियन प्लेट को धक्का दे रही है
जिससे जमीन के नीचे तनाव जमा हो रहा है। इसी जानकारी के आधार पर इन इलाकों में बिल्डिंगों के नियम कानून सख्त बनाए जाते हैं।
और संसाधनों का क्या?
ये भी बहुत जरूरी है। दुनिया के ज्यादातर कीमती खनिज जैसे तांबा, सोना, चांदी उन्हीं जगहों पर मिलते हैं जहां प्लेट्स की बाउंड्री होती है,
जहां ज्वालामुखी फटते हैं।
बिल्कुल, ये सिद्धांत कंपनियों को बताता है कि तेल, गैस या खनिजों की खोज कहां करनी चाहिए। ये एक तरह का खजाने का नक्शा है।
और एक और हैरान करने वाली बात है, इसका जलवायु से कनेक्शन।
अच्छा, वो कैसे?
अगर हिमालय नहीं होता जो प्लेटों के टकराने से बना है तो भारत में मॉनसून भी नहीं होता।
अरे वाह,
ये पहाड़ मॉनसून की हवाओं को रोककर पूरे उपमहाद्वीप में बारिश करवाते हैं। मतलब जमीन के नीचे की हलचल आसमान के मिजाज को भी तय करती है।
इस पूरी चर्चा के बाद मेरे लिए जो सबसे बड़ी और आश्चर्यजनक बात है वो गहरे समय का विचार ही है। ये सोचना कि जिस दिल्ली में हम बैठे हैं वो करोड़ों साल पहले भूमध्य रेखा के पास थी और आज भी उत्तर की तरफ खिसक रही है, ये हमारे रोजमर्रा के अस्तित्व को एक बहुत बड़ा संदर्भ देता है।
हमारी सारी चिंताएं, हमारी सारी उपलब्धियां इस विशाल भूवैज्ञानिक नाटक के सामने बहुत छोटी लगती हैं।
और आपके लिए?
मेरे लिए सबसे मूल्यवान सबक वैज्ञानिक प्रक्रिया की कहानी है। एक आइडिया जिसे एक समय पर पूरी तरह से नकार दिया गया था,
दशकों बाद नए सबूतों के आधार पर एक क्रांति बन गया।
हाँ, ये दिखाता है कि विज्ञान अपनी गलतियों को सुधारता है और सच हमेशा सबूतों पर टिका होता है, किसी की राय या विश्वास पर नहीं।
और ये हमें सिखाता है कि किसी भी जानकारी को आंख बंद करके ना माने,
सवाल पूछें और सबूतों की मांग करें।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।